देर रात को यशवर्धन के घर चल रही मीटिंग में वैदेही, प्रतीक और देव एक साथ यशवर्धन के घर पर मौजूद थे। महामीटिंग में यशवर्धन के अलावा उसका पर्सनल असिस्टेंट अनंत देसाई भी था। मीटिंग में यशवर्धन उन सब बातों के बारे में उनको डिटेल में बता रहा था जो उसने राघवेंद्र के साथ रहते उसके बारे में पता लगाई थी। राघवेंद्र के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया होगा, अब इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, यशवर्धन ने कहा। बोल के वक्त उसका ध्यान वैदेही पर गया जिसकी नज़रें अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी थी। वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वैदेही ने अपने स्क्रीन पर मानव की तस्वीरें निकाल रखी थी। वो उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी। कुछ खास मिला? यशवर्धन ने पूछा। वैदेही का पूरा ध्यान डेस्कटॉप पर था। अचानक यशवर्धन के पुकारने पर वो चौंक गई और उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या? हम मानव की बात कर रहे हैं वैदेही जी, लगता है आपका सारा ध्यान मीटिंग के बजाय मानव पर लगा है। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि जब राघवेंद्र का पूरा परिवार एक साथ रहता है तो वो मानव को अपने साथ क्यों नहीं रखता? राघवेंद्र और उसके भाई की स्कूलिंग यहीं से हुई है तो फिर क्या रीज़न हो सकता है जो उसने अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेजा? इसमें क्या रीज़न हो सकता है वैदेही मैम? देव ने कहा। पहले उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, हो सकता है पैसे आने पर उन्होंने मानव को बाहर पढ़ने भेजा हो या फिर मानव ने खुद ही बाहर पढ़ने की ज़िद की हो। मैं तुम्हारे किसी भी बात से अग्री नहीं करती देव। पैसों की बात करूं तो राघवेंद्र का परिवार हमेशा से संपन्न था। उसके दादा परदादा के टाइम से ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो भी अगर विदेश में जाकर पढ़ना चाहते तो उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती थी, वैदेही ने जवाब दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मानव अपनी मर्जी से वहां अपनी स्टडी के लिए गया हो, प्रतीक ने कहा। ऐसा भी नहीं हो सकता, मानव की सोशल मीडिया पोस्ट से यही पता चल रहा है कि वो एक ओवर सेंसिटिव और काफ़ी इमोशनल इंसान है। वो रोज़ाना अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ पुरानी फ़ोटो शेयर करता है और कैप्शन में उन्हें मिस करने की बात करता है। इससे पता चल रहा है कि वो अपनी मर्जी से बाहर पढ़ने नहीं गया होगा। इसके इस बिहेवियर को देखकर लग रहा है कि राघवेंद्र नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई इन सब चीज़ों में पढ़े। इससे साफ पता चल रहा है कि मानव उसके लिए कितना अजीज होगा, तभी वो उसे इन सब से दूर रखना चाहता है। राघवेंद्र की कमजोर कड़ी कोई और नहीं, उसका छोटा भाई मानव है, वैदेही ने एक सांस में बोलते हुए पूरी बात का निष्कर्ष निकाल दिया। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने वैदेही को अप्रिशिएट करने के लिए ताली बजाई और कहा, आपको नहीं लगता कि आप गलत प्रोफेशन में आ गई? आपको न्यूज रिपोर्टर नहीं, आपको तो CBI में होना चाहिए था मिस रघुवंशी। इस तरह के केसेस सॉल्व करते करते एक्सपीरियंस हो गए, हम छोटी चीज़ों को भी मिस नहीं कर सकते। जब आपने कहा ना कि आप राघवेंद्र की बाकी चीज़ों को जानते हैं लेकिन मानव से जुड़ी ज़्यादा बातों का नहीं पता, बस वहीं से मुझे आइडिया आया कि ऐसा क्या हो सकता है जो राघवेंद्र सबके सामने मानव के बारे में बात ही नहीं करना चाहता होगा, वैदेही ने जवाब दिया। हमें राघवेंद्र की कमज़ोर कड़ी का तो पता चल गया, लेकिन हम मानव तक पहुँचेंगे कैसे? अनंत देसाई ने हैरानी से पूछा। उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, हमें मानव तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हम तक चलकर आ रहा है, वैदेही ने कहा तो सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। जवाब में उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को उन सब की तरफ कर दिया जहां मानव की लास्ट पोस्ट में वो सबसे मिलने की बात कर रहा था और उसने कमिंग बैक टू इंडिया का स्टेटस डाल रखा था। चलो ये सब तो सॉल्व हो गया, अब फिर से राघवेंद्र पर आएं, यशवर्धन ने कहा। सबके हामी भरने पर यशवर्धन फिर से आगे चला गया और राघवेंद्र के बारे में बताने लगा। उसके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आज से 10 साल पहले अपने कॉलेज में स्टूडेंट लीग अध्यक्ष बनने के साथ हुई थी। आगे चलकर उसने पार्षद का पद जीतकर बाद में MLA का पद हासिल किया था। इस बार फिर से उसने उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, ये तय है कि वो जीतेगा क्योंकि उसके अलावा उसके एरिया के लोग किसी और को वोट देते ही नहीं हैं। फॉर्मेलिटी के लिए किसी कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है लेकिन वो भी उन्हीं का आदमी होता है जो उसका प्रचार प्रसार करता है। उसके पॉलिटिक्स में आने के बाद उसके कई रिश्तेदार भी इसी फील्ड में आगे आए जिसे ये पूरा सपोर्ट करता है। हाँ, हम जिस केस की स्टडी कर रहे हैं वो एरिया भी इसी के किसी रिश्तेदार के अंडर है, देव ने बताया। पॉलिटिकल करियर से हटकर बात करूं तो ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होगा जिसने और इसके रिश्तेदारों ने सत्ता की आड़ में नहीं किया होगा, यशवर्धन आगे बताता हुआ बोला। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इसके गाँव में रहने वाले सभी लोग इसके लिए काम करते हैं, आसपास के गाँवों पर भी इसने कब्जा कर रखा है। इलीगल प्रॉपर्टी बनाने के साथ साथ शराब, मारामारी, लोगों से पैसे हड़पना, ये सब तो बहुत कॉमन है। राघवेंद्र खुद नहीं जानता होगा कि उसने कितने लोगों को मारा होगा। इन सब से इसने काफ़ी सारा काला धन भी इकट्ठा कर रखा है। विदेशों के बैंक में जमा करने के साथ यहाँ पर डोनेशन देना लोगों को दिखाने के लिए और चुनाव के प्रचार प्रसार में लगने वाला सारा पैसा इसी की तरफ से खर्च होता है, तभी त्यागी जी कुछ नहीं कहते।
क्योंकि उनकी पार्टी का पूरा मेंटेनेंस राघवेंद्र के दम पर चलता है, आनंद देसाई ने बताया। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यशवर्धन ने बताया, सिर्फ यही नहीं, इसके रिश्तेदार भी इसी की तरह हैं। उनके कामों की बात करूं तो ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संगीन अपराध तक वो लोग बिना किसी डर के करते हैं। उन सबके सिर पर राघवेंद्र का हाथ है। कई बार कुछ पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा भी है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। इसी के साथ राघवेंद्र की पूरी जन्म कुंडली यशवर्धन ने सबके सामने खोल कर रख दी। ये उन लोगों के लिए हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी वो इस तरह के लोगों का सामना कर चुके थे। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का टाइम है, जहां हम राघवेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। अगर इन 10 दिनों में हम कुछ नहीं कर पाए और वो मुख्यमंत्री बन गया, तो हम बाद में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, यशवर्धन कुर्सी पर बैठकर बोला। 10 दिन का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि राघवेंद्र के खिलाफ ज्यादा नहीं तो कुछ सबूतों को जुटाकर उसे मुख्यमंत्री बनने से रोक सकें, प्रतीक ने जवाब दिया। कुछ सोचा है कि आगे क्या करेंगे, यशवर्धन ने पूछा। प्रतीक सर, वैदेही ने प्रतीक की तरफ देखकर बोला, सबसे पहले तो आप राघवेंद्र का इंटरव्यू अरेंज करवाइए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वक्त का हर एक पल कीमती है। मैं कल ही इस बारे में राघवेंद्र के असिस्टेंट से बात करने की कोशिश करता हूँ, प्रतीक ने जवाब दिया। तो क्या जब तक उसके असिस्टेंट की तरफ से जवाब नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, देसाई जी ने पूछा। नहीं, वैदेही ने कहा, मैं देव को लेकर राघवेंद्र के गांव के लिए निकलती हूँ। जैसे ही वैदेही ने राघवेंद्र के गांव जाने की बात कही, तो देव ने छट से बोला, इस वक्त मैम रात के 1 बज रहे हैं और आप मुझे इतनी रात को उस खतरनाक क्रिमिनल के गाँव जाने को कह रही है। मैंने कब कहा कि हम अभी जाएंगे, हम सुबह 4 बजे उसके गाँव के लिए निकलेंगे, वैदेही ने जवाब दिया। तो फिर हम सोएंगे कब, देव ने आंखें बड़ी करके कहा। रास्ते में, वैदेही ने जवाब दिया और आगे का प्लान बताने लगी। वहां किसी लॉज या होटल में ठहर जाएंगे, जब तक उसका इंटरव्यू अरेंज नहीं हो जाता तब तक मैं और देव छुपकर वहां रहेंगे और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस काम के लिए इतनी सुबह जाने की क्या जरूरत है, आप लोग आराम से कल दोपहर तक जा सकते हैं, यशवर्धन ने सुझाव दिया। हम जानते हैं, लेकिन वैदेही को अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना बहुत पसंद है, प्रतीक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा।
मीटिंग में आगे की बातें फाइनल हो चुकी थी, जहां देव और वैदेही का अगले दिन निकोला जाना तय हुआ। वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सब अपने घर जाने को थे। वैदेही जी, हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, हम आपको गाड़ी भिजवा देंगे, आप और देव सुबह जल्दी चले जाइएगा, यशवर्धन की बात सुनकर वैदेही हल्की सी हंसी और फिर कहा, हमें वहां कॉमनर बनकर जाना है, VIP नहीं, हम लोग बस से चले जाएंगे। उसको बाय बोलने के बाद प्रतीक, वैदेही और देव वहां से निकल चुके थे। उन लोगों से बात करके यशवर्धन और आनंद देसाई भी आश्वस्त महसूस कर रहे थे। वैदेही जी से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगता है, वो इस कलयुग के घनघोर अंधेरे में साक्षात रोशनी की एक किरण नजर आती है, आनंद देसाई ने कहा। हाँ, अब तक हमने भी उनके बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन उनसे मिलकर उनके इरादों के बारे में जानकर लगता है मानो इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो इन क्राइम्स को सच में खत्म करना चाहता है। पहले हमें लगता था कि हम अकेले राघवेंद्र के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैदेही से मिलकर पता चलता है कि अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है, यशवर्धन ने जवाब दिया। बाकी सब तो वैदेही जी संभाल लेगी, लेकिन पार्टी और त्यागी जी को हमें ही देखना होगा, उन्हें गलती से भी इस बारे में भनक तक लगी तो बात हम तक भी आ सकती है, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि त्यागी जी को कैसे दबा सकते हैं, उनकी हर एक कमजोर कड़ी और नसों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, और लगता है कि अब उन्हें दबाने का वक्त भी आ गया है, यशवर्धन ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। देर रात हो जाने की वजह से देसाई जी अपने घर के लिए निकल चुके थे, तो वहीं यशवर्धन भी अब सोने जा चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे। निकोला जाने के लिए वैदेही को लेने के लिए देव उसके घर पर आया हुआ था। वहीं वो अंदर तैयार हो रही थी, जबकि नरगिस और देव बाहर बातें कर रहे थे। तुम लोगों को जाने के लिए कोई और टाइम नहीं मिलता क्या, जो सुबह सुबह आकर मेरी भी नींद खराब कर देते हो, नरगिस ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे अपनी नींद प्यारी नहीं है क्या, ये तो वैदेही मैम है, तब मैं कुछ नहीं कहता, इनकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता, देव ने भी उबासी लेकर जवाब दिया। दोनों की आवाज़ से साफ नजर आ रहा था कि वो बीच नींद से उठकर आए हैं। वैसे तुम्हारे कपड़े सच में अजीब हैं, नरगिस ने देव की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर हंसने लगी। देव ने नीचे धोती पहन रखी थी और ऊपर छोटा सा कुर्ता, माथे पर महाराष्ट्रीय तरीके से टीका लगाया हुआ था और बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। नरगिस के हंसने पर देव ने उसकी तरफ मुंह बनाया, तभी वैदेही बाहर निकल कर आई। वो दोनों वैदेही को देखकर पहले हैरान थे और फिर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहे थे।